نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القران المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مال الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم شاید آپ حضرات کو کچھ اس معاملے میں تجربہ ہو اور آپ کا ذوق ہے گارڈنگ کا یا پھول وغیرہ کا, بیک یارڈ میں تو اکثر لوگوں کی تھوڑا بہت باغیچہ ہوتا ہے کہ اگر گارڈن کو آدمی متواتر دیکھ بھال نہ کرے تو اس میں کچھ جنگلی پودے پیدا ہو جاتے ہیں, جڑی بوٹیاں لگتی ہیں, اور اس کو توجہ نہ دینے کی وجہ سے, ان جڑی بوٹیوں کی وجہ سے سارا گارڈن جو ہے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح انسان کا تعلق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی ارشاد فرمایا ہے, اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو پاک رکھو, صاف کرو. ہاں, ہم لوگ ظاہر کی طرف تو توجہ دے دیتے ہیں, کافی حد تک اس میں ہم کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن جہاں تک باطن کا تعلق ہے تو اس میں ہم بہت پیچھے ہیں, اور یہ بہت بڑی نقصان کی چیز ہے. جیسے میں نے مثال سے آپ کو بتایا کہ گارڈن میں اگر جنگلی پودے لگ جائیں پورے گارڈن کو خراب کر دیتے ہیں, اسی طرح انسان کے باطن میں دیکھ بھال کرنے کی نہ وجہ سے, توجہ نہ دینے کی وجہ سے بڑے عجیب عجیب قسم کے گناہ پیدا ہو جاتے ہیں. یہ قرآن بتا رہا ہے سارا, فی قلوبہم مرضٌ فزادہم اللہ مرضاً, قرآن کہتے ہیں پھیلتے جاتے ہیں, یہ جنگلی پودے جس طرح پھیلتے ہیں تو اس طرح گناہ پھیلتے ہیں انسان کے اندر, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا, بس اپنے ظاہر پہ صحیح ہے, لیکن اندر جو گناہوں کا جال پھیلتا چلا جاتا ہے, ظاہر ہے کیونکہ اس پہ ہم نے توجہ نہیں دی, اندر کی طرف کوشش ہی نہیں کی اس کو صفائی کرنے کی, یا سوچا بھی نہیں کبھی. اور جو کامیابی آخرت کی ہے وہ ظاہر پر نہیں ہے دوستو, وہ آخرت کی کامیابی جو ہے باطن پر ہے. اس وجہ سے یہ ہے کہ باطن پہ توجہ نہ کرنے کی وجہ سے انسان کے ظاہر کی جو کوشش ہے وہ بھی بیکار ہو جاتی ہے. ظاہر کے اور باطن کے گناہ جو ہیں ایسے ہیں کہ پھیلتے 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 ہوتے ہوتے پھر انسان کو احساس ہی ختم ہو جاتا ہے اس کا, اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا, بڑا عام ہو جاتا ہے اس کے لیے, لیکن ہوتا بہت خطرناک ہے وہ. باطن گناہ میں ایک میں آپ کو عرض کروں کہ جیسے بہت عام ہے ہمارے یہاں کہ کسی کو حقیر سمجھ کر اس پر ہنسنا, تانے دینا, مذاق اڑانا, باتیں ماننا بہت عام ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف انسانوں کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں, صفات دی ہیں, تو کسی میں اگر وہ صفت نہیں ملتی ہے, وہ اسے کمتر ہے, تو ہمارے معاشرے میں اس کو بہت حقیر سمجھا جاتا ہے, اس کے ساتھ تانا کیا جاتا ہے, اس کو برا کہا جاتا ہے, बड़े अच्छे अंदाज अजीब अजीब अंदाजों से इंसान उस पर ताने मारता है। और बड़े अच्छे अच्छे लोग, उनको पता नहीं कितना बड़ा गुना है किसी को हकीर समझना। किसी वजह से अल्लाह ने आपको कोई सलाहियत दे दी, उसमें सलाहियत नहीं है, तो फिर उस पर ताने मार दें, देखो इसको, लुक एट हिम, लुक, हाँ, ये कैसा अंदाज बन गया इंसान। बड़े अच्छे अच्छे लोग, नमाजी, परहेज साहब, सब ये काम करते हैं, वो उनको कोई गुना नहीं, ये गुना है, लोगों को कुछ पता नहीं, बड़े आराम से कह देते हैं। जबकि हुक्म ये है अल्लाह की तरफ से कि किसी मुसलमान को अगर तुम जना करते देखो, शराब पीते देखो, डाके डालते देखो, चोरी करता देखो, इंतहा दर्जे की बुराइयां करता देखो किसी मुसलमान को, तो हुक्म यह है कि ना सिर्फ उसको बुरा कहो बल्कि अपने से अफसल समझो। कितनी बड़ी बात है, देख रहे हैं आंखों से उसको, बुरा है, सब कुछ है, हम नमाजी हैं, नमाज की तरफ जा रहे हैं, माशाल्लाह तहज्जुद गुजार भी हैं और तलावत भी करते हैं, कितना मुश्किल है, देखें ये कितना बड़ा गुना है। अब गुना ये, इसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता अभी कितना बड़ा गुना है। हम देख रहे हैं कि ये नमाज पढ़ता है, जाहिर नजर, हाँ जो गुनाह कर रहा है वो तो बुरा है ही, उसको तो हम बुरा समझेंगे, लेकिन जात से उस इंसान को बुरा समझना, हकीर समझना, दिल में ख्याल आ जाए उसके बारे में कि ये यार बड़ा गंदा आदमी है, एक नफरत से पैदा हो जाना, बहुत बड़ा गुनाह है ये अंदर का, बहुत बड़ा गुनाह। मिसाल मैं आपको देता हूँ, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, आप वाकिफ हैं, सैयद ताइफा कहा जाता है उनको, यानी तमाम औलिय्याल्लाह के सरदार कहा जाता है, कितने मुकाम के बुजुर्ग होंगे, क्या मुकाम होंगे। तो एक गुजर रहे थे, देखा एक फकीर नुमा आदमी मोहताज सा बैठा है, जाहिर है लोग उसकी हाजत को पूरा कर रहे हैं, वो बैठे, तो फरमाते हैं कि मेरे दिल में उसको देख के एक ख्याल आया, कितने बड़ा इंसान है, ख्याल सा आ गया कि यार ये बैठा है कुछ काम धंधा ही कर लेता है, वैसे लोगों से पैसे मांग रहा है या मोहताजी कर रहा है, तो बुरा ख्याल नहीं, हालांकि यही सोचा कि कोई काम वाम करता तो अच्छा था ना, बजाय इसके कि लोगों से पैसे ले रहा है या लोग उसको मदद कर रहे हैं, बस इस तरह ख्याल आया, बात ख़त्म हो गई, शाम को गया, रात को जब सोए तो सोने के बाद देखा कि कोई शख्स आया है, एक थाल लेकर आया है, थाल पे कपड़ा लटक रखा हुआ है, और कहते हैं हज़रत मुझ फरमाए आपके लिए लेकर आया हूँ। भाई मेरे लिए क्या लेकर, खाएं हज़रत ये आपके लिए खाना। तो कहने मैंने कपड़ा झूठाया तो मुर्दार का सड़ा गोश्त था और इतनी बदबू थी कि जिसका कुछ तस्वर भी नहीं किया जा सकता। तो मैंने कहा ये मैं खाऊं, मेरे लिए लेकर आए। तो उसने कहा सुबह तो खाया आपने, अब क्या हो गया नहीं खाएंगे, तो अभी तो आप खा के हैं ये मुर्दार का गोश्त, बड़े मजे से खा रहे थे, और अब क्या हो गया आप नहीं खा रहे इसको। वो समझ गया, आँख खुल गई, सुबह का इंतजार किया, उस आदमी के पास पहुंचे जिसको फकीर मोहताज समझ रहे थे, और वो आरिफ बिल्ला था, अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा बुजुर्ग था वो, हमें क्या पता किसी के बारे में, देखें। तो अभी वो पहुंचे थे तो उन्होंने कहा क्या बंदे, अल्लाह सुबहान तआला इंसान की दुआ तोबा को कबूल फरमा लेता है, अल्लाह ने तेरी तोबा कबूल कर ली है, जा वापस चला जाए, आंदा से काम ना करना। कहते इस कदर शर्मिंदा हुआ मैं अपने इस फील पर, कितने मुकाम का आदमी वो क्या समझा था, देखिए और कितने बड़ा आदमी था जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह। ये है बातिन के गुनाह, वो तो वो लोग थे कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हर वक्त अपने बातिन की तरफ तवज्जो करने वाले, और हम और आप तो हैं क्या, तो गुनाह दिखा दिए कि गुनाह तो ऐसा है, गुनाह तो ये है। देखिए यह आम हमारे लिए बड़ी मामूली बात है, बस हम सब कुछ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत पहुंचे हुए हैं, सब कुछ है, बस ये क्या, ये तो बहुत मामूली सी बात है मेरे भाइयों। सही आखिरत की तैयारी करने के लिए याद रखें इंसान को बहुत एहतियात से जिंदगी गुजारनी पड़ती है। آخرت کا معاملے کو اتنا آسان نہ سمجھیں, آسان نہ سمجھیں, بڑا سخت حساب ہے آخرت کا. اور یہ جو باطن کا حساب ہے اس پہ تو ہم محنت ہی نہیں کرتے, اور اس پہ تو کوئی آج تصور بھی نہیں اس چیز کا, کوئی باطن بھی ہے جس کے لیے کوئی تزکیہ کیا جاتا ہے, کوئی تصفیہ کیا جاتا ہے, جس کے لیے کوئی محنت کی جاتی ہے. اگر کوئی چلا بھی جاتا ہے تو وہ اس وجہ سے چلو بھائی ہم اب صوفی بنیں گے, اللہ والا بنیں گے, کوئی کشف ہوگا, کوئی کرامات ہوگا, کوئی شیخ بن جائیں گے, کوئی بزرگ بن جائیں گے, کوئی بدنام ہوگا, خانقاہیں بنائیں گے. یہ تو یہ کیسے ختم ہو جائے گا؟ جب آپ ایک باغ کی حفاظت نہیں کریں گے تو جنگلی پیدا ہو جاتے ہیں, جب آپ اندر کی حفاظت نہیں کریں گے تو کیا کیا چیزیں پیدا ہوں گی. تو یہ اس سے بھی آگے اسٹینڈرڈ ہے اس کا. اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں, حکم تو یہ ہے کہ تم مسلمان کی بات تھی, کسی کافر کو بھی حقارت سے نہ دیکھو, حقیر نہ سمجھو, بلکہ اپنے سے افضل سمجھو انجام کے لحاظ سے. یہ کافر کے بارے میں, کافر کو ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ کافر ہے, تو اس وقت بھی ایسا خیال دل میں نہ ہو کہ یار یہ تو کافر ہے, چھوڑو, نہیں نہیں, انسان ہے. یاد رکھو اللہ کہتا ہے انجام کے حساب سے سوچو. اس وقت وہ کفر کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اللہ سے دور ہے, اس کو تو اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے, اور ہم اللہ کو جانتے ہیں, کلمے پڑھتے ہیں. تو اس کو بھی حکم یہ ہے کہ حقارت سے مت دیکھو, اس کو بھی کیوں, انجام دیکھو. کل کیا پتا کہ وہ ایمان لے آئے, ایمان لانے کے بعد اس کی بخشش ہو جائے, اور ہم جو ہے ہمارے پاس ایمان ہے, کل ہم فارغ ہو جائیں اور کافر ہو جائیں اور ہم جہنم میں چلے جائیں. اصل کامیابی تو کس پر ہے؟ انجام پر. ایک بزرگ جا رہے تھے تو تماش بین ہوتے نا لوگ, دیکھ کے ہنسنے لگا, کہتا ہے کتا بھی اچھا تھے اسے, تو صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ تو اللہ والا تھا. اس نے بڑا پیارا جواب دیا, کہتا ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے, میں تو بالکل ناراض نہیں ہوں, اگر میرا انجام ایمان کے ساتھ ہوا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا تو میں اس کتے سے اچھا ہوں, اور اگر میرا انجام ایمان کے ساتھ نہ ہوا تو کتا مجھ سے اچھا ہے, بالکل کتا مجھ سے اچھا ہے. تو ہمیں کیا پتا کہ کل اس کا ایمان ہو جائے اور ہمارا ایمان نہ ہو, کیا پتا ہم کلمہ پڑھ سکیں یا نہ پڑھ سکیں. کتنی احتیاط سکھاتا ہے. مجھے ایک یہاں واقعہ یاد آتا ہے, ہمارے قابلین میں ہے بہت اچھے بزرگ, اور ان کی ایک خاص پہچان بھی ہے, حضرت مولانا ظفر علی عثمانی, اور ایک مولانا شبیر علی عثمانی ہیں. ان کے بڑے ایک وجہ سے بھی مشہور ہیں کہ ایک نے ایسٹ میں جھنڈا رکھا تھا اور ایک نے ویسٹ پاکستان میں جھنڈا رکھا تھا, جب تقسیم ہوئی تھی انڈیا پاکستان کی. تو بڑے اقابرین میں ہیں, بڑے بزرگوں شمار کیا جاتا ہے ان کا. تو پاکستان سے کچھ دنوں کے بعد واپس انڈیا گئے, تو اپنے گاؤں میں گئے جہاں ان کا گاؤں تھا یا شہر تھا. تو ان کے دوست تھا بنیا, سلام دعا تھی, دوست تھا, بیٹھنا اٹھنا ہوگا ان کو, مل جل کے تو رہتے ہیں کافر مسلمان سب. ان کے چلو اس سے ملتے ہیں جا کے, اسے ہی واقعہ سنا رہا ہوں آپ, دیکھیں کدھر. تو وہ جب گئے دیکھ تو ملا نہیں, تو بھائی کدھر گیا, اس کے گھر گئے تو گھر والوں نے کہا جی وہ تو مولانا وہ تو بہت سخت بیمار ہے. کہ بہت سخت کیا ہوا اس کو؟ کہتے جی وہ تو اس کونے میں رکھا ہوا ہم نے الگ, وہ چھو چھات ہوتی ہے نا ہندو میں تو بہت زیادہ, وہ کونے میں پڑا ہے جی, ہم تو اس کے قریب بھی نہیں جاتے, وہ سخت بہت سخت بیمار ہے, وہیں چھٹی گئی ہوئی اس کی, کب سے کہتے بہت عرصہ ہو گیا. میں تو ملوں گا, ہماری مذہب میں تو یہ نہیں ہے چھوت چھات, ہم تو توقع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے, دینے بیمار کر دے گا تو کر دے گا, شفا دے گا تو شفا دے گا, ہمیں تو اس چیز کا نہیں. میں تو ملتا ہوں اس سے, میرا دوست ہے, کافی دنوں ہو گئے مجھے ملا نہیں. کہتے ہاں ملا ہے, آپ کی مرضی ہے, تو ہم تو اس کے قریب بھی نہیں جاتے. وہ گئے اس کی چتپائی پہ لیٹا تھا, انہوں نے دیکھا مولانا کو تو پہلے بڑے حیران ہوئے, کیوں آپ یہاں کیسے آ گئے, میں تو بیمار ہوں دور کر. نہیں وہ ساتھ بیٹھ گئے کرسی پہ, کبھی تو بیمار تو کیا ہوا, میں تیرا حال پوچھنے آیا ہوں, کیسا ہے تو طبیعت, میں حال وال پوچھا, مزاج پوچھے اس کو, طبیعت خوش کیا اس کو. تو وہ بہت حیران ہوا, کہنا میں تو آج عرصے کے بعد کسی انسان سے بات کر رہا ہوں, मैं तो बिल्कुल बीमारी की वजह से छूत की बीमारी समझ के मुझे तो अलग कोने में फेंक दिया, मुझे खाना भी ऐसे दिया जाता है बांस होता है ना बांस, उसमें खाना कुछ लपेट के बांस के जरिए मेरे तक तो फेंक दिया जाता है, तो फिर मैं उसको खाता हूँ। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया, अजीजों ने छोड़ दिया, औलाद ने छोड़ दिया, मैं तो ताजुब कर रहा हूँ कि आप मौलाना आप मुझे मिलने आ गए, अजीब बात है। हम तो इस चीज़ में कुछ ऐसी बात नहीं है कि हम समझे छूत छात ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बहरा आप आराम करें, सोया बड़ी खुशी हुई आपसे मुलाकात थी। तो मौलाना उठने लगे, कहना बैठ दें दो मिनट जरा साथ बैठें, बैठ गए। कहते मौलाना बात मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ आपसे, क्या बताओ। कहते इस बीमारी से मुझे एहसास हो गया आज कि हमारा मजहब झूठा है और आपका मजहब सच्चा है, आज साबित हो गया। बहुत धोखे रहा हमारी जिंदगी में, बाबा एक कर्म फरमाया कि मुझे कलमा पढ़ाए और मुसलमान कर लें, सच्चा वाक़ा आपको सुना रहा हूं। देखें इखलाक की बात। अब उन्होंने कहा ठीक है मैं तुझे कलमा पढ़ा देता हूँ। उन्होंने हाथ पकड़ा, उन्होंने क्या छू चाह पढ़ के कलमा पढ़ाया। अल्लाह की शान देखें आप कि थोड़ी देर के बाद उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह सुभान अल्लाह, यानी सारी जिंदगी जो बुतों के आगे झुका रहा, ना एक नमाज पढ़ी, ना कुरान की तलावत की, ना कोई रमजान देखा, ना कोई उमरा किया, ना कोई हज किया, एक नमाज में जाकर जुम्मा उसने कभी नहीं पढ़ा, चटपाई पे लेटे लेटे अल्हम्दुलिल्लाह उसकी टन हुई अल्लाह के फजल से और उसने कलमा पढ़ लिया, सारी जिंदगी के गुनाह जितनी भी शिर्क था सब खत्म हो गया और बगैर किसी इबादत के वो जन्नत में पहुंच गया। मालिक है वो, खालिक है, कादिर है। हम कौन होते हैं किसी को कहने वाले कि तू गंदा है, मैं अच्छा हूं, तू बहुत बुरा है, बस मैं ये करने लगा हूं, मैं बड़े नेक काम पे हो गया हूं, फला हो गया हूं। देखिए ठीक अखलाक वाले आदमी ने जाके किसी से मुलाकात की थी, एक सुन्नत अदा की नबी पकसम की, बीमार है जानने वाला है कोई भी हो, हिंदी हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, हम इससे क्या ताल्लुक, ईमान अल्लाह देता है, हम तो अपने मजहब के मुताबिक चले, हमें किस किस्म का गरूर और फख्र है। और हकीकत तो यह है कि मुझे खुद पता नहीं, उसको खुद पता नहीं कि हम काले ईमान के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे, मैं तो लास्ट सांस तक यही स्ट्रगल करनी है। जिस तरह सारी जिंदगी के बुत प्रस्ती और सारे गुनाह उसके एक तरफ रख दिए गए, इसी तरह कोई गुनाह इंसान से ऐसा हो जाए तो सारी जिंदगी के जो नेकियां और कुरान और हज उम्रे एक तरफ रख दिए जाते हैं और जहन्नुम फेंक दिया जाता है। इतनी खतरनाक चीज है। तो इसके लिए अब ये तो जो इबादत इतनी बड़ी एक मामूली चीज तो नहीं है। आप मुझे बताएं, मैं ऐसी बात तो नहीं कर रहा, लेकिन सब हम अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखें क्या हम में ये हरकतें नहीं करते। हम लोग बहुत ज्यादा हरकत कहते भी नहीं तो ख्याल भी आएगा जो भी होगा, अल्लाह ताला किसी को थोड़ी बहुत तौफीक अता फरमा दें नमाज वमाज की या भेज दें, वैसे दुनिया आपसे टाऊ किसी किसी में अल्लाह ने रूज दिया है, किसी में इल्मियत में दिया है, किसी में दिया है हुस्न में दिया है, माल में दिया है, औलाद में दिया है, किसी चीज़ में भी दिया है, तो किसी चीज़ से दूसरे से कंपेयर करके आदमी दिन में यह ख्याल पैदा हो जाए कि यार ये तो माशाल्लाह तो अच्छे अच्छे भी ना समझे, बस जहन में आ रही है चीज़ एक ऐसी सवाल आ रहा है कि बस हम बेहतर हैं, ये तो देखो क्या कर रहा है बेटा, ताश खेल रहा है, शर्म नहीं आती इसको। अक्सर देखा होगा बुढ़े लोग बहुत करते हैं, तो तुम्हें शर्म नहीं आती ताश खेल रहे हो बैठ के, बेहया नमाज हो रही है, तुम नौजान हो रहे हैं, हालांकि पता चले ये तबलीग नहीं कर रहा बल्कि क्या है शो मार रहा है, अपने आपको बड़ा ही दिखा रहे हैं। मैंने समझाने का स्टाइल जो है इस्लामिक वे तो वो डिफरेंट है, ये तो है ही नहीं आप किसी को तो तुम क्या है, ये देखते हो तमाशे भी नहीं कर रहे हो, नमाज पे तुम नहीं जाते हो, यार देखो बेशर्म लोग हैं, शर्म नहीं आती जी, वहां से कहते आ रहे लोग ताकि सुन रहे कि होता है हमारे यहाँ नहीं होता माशरे में, सुबह शाम ये चीजें देखी किसी को अल्लाह ने तौफीक दे दी और दूसरे को बिल्कुल बेकार समझते, वो कल तुम क्या थे, तुम किस हिसाब पे तुम क्या थे जो अल्लाह ने हमें तौफीक दे दी, कौन है यहाँ पे इतना बड़ा आरिफ बिल्ला, कौन है जनेद बगदादी से बड़ा मुझे बताएं सूफी है, इतनी हिफाजत के बावजूद उनमें एक ख्याल पैदा हो गया और इतनी बड़ी सजा उनको भी नहीं छोड़ा अल्लाह ने, सजा दिखा दी उनको, ये खा ये दिखा दी इस तरह कि अगर तू तौबा ना तुझे तौफीक में तौबा देता तो मरने के बाद जुनेद साहब आपको यही मिलना था, ये चीज आपके सामने पेश की, फला वक्त ने फला आदमी के बारे में ये सोचा था। एक बात तो ये हो गई, एक चीज ये अल्हम्दुलिल्लाह कि ये सब कुछ जानते हैं हम कि इतनी चीजें हैं और फिर हम इसके इलाज ना करें, ये तो बहुत ही हिमाकत वाली बात हो गई। पता ही नहीं हो तस्किया क्या होता है। तस्किया कहते हैं नहाने धोने को अंदर, जैसे है ना आदमी जिसम कहता है भाई सबसे पहले मकान बनाएगा तो आदमी पूछे भाई वाशरूम किधर है, पूछता है आदमी पूछता कि जी ये अनसेट है आपके लिए तो कमरे में लगा दिया हमने, बड़ा खुश होता है वाशरूम है क्यों जरूरत पड़ेगी, सुबह नहाएगा सफाई किया जिसम को, तो काश अंदर के बारे में नहीं हम सोचते कि हम सोचें कि इसका वाशरूम क्या है, फरिश्ते फौरन कर जाएंगे जा जिक्र है मासमी फजर के बाद अल्लाह का जिक्र हो रहा बैठ जा माशो हो जाएगा बिल्कुल गुनाहों को साफ हो जाएगा। लेकिन शौक किसको है, बस हमने नमाज पढ़ ली है बस हमने फला कर ली है जी, हम तो तहज्जुद गुजार आदमी है तो उसको कौन साफ करेगा, उसको कौन वॉश करेगा बताओ, ये तो वहीं जमा है, ये कोई हमारा ऑप्शन नहीं है कि भाई ये हमारा ऑप्शन नहीं है कि हम हमारे यहां गुसल खाना होना चाहिए वाशरूम होना चाहिए कि हम फिर नहीं, कंपल्सरी है ये क्योंकि हम नहाएंगे जुमा है गुसल करेंगे नमाज पढ़ेंगे कंपल्सरी है, खूब चमकेंगे सोप लगाएंगे और शैम्पू लगाएंगे चमक धमक के बाहर निकलेंगे, बाहर क्या बात है जी कैसा आदमी जा रहा है, लिबास पहनेंगे इमाम पहनेंगे लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, तो फरिश्ते क्या देखते हैं, फरिश्तों अगर तो शक्ल खत्म हो जाती है वो अंदर देखते हैं इसके अंदर कितना साफ और शफाफ है कितना नूरानी है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह सुबह शाम गर्मी के जमाने में हम नहाते हैं और साफ करते हैं बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने जो हमें गुसल दिया है कि इतने खतरनाक अंदर तुम्हारे जरासीम हो जाते हैं सुबह से शाम तक, इतने गुनाह अंदर जमा हो जाते हैं जिसका इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता, इतनी जड़ी बूटी होती हैं कि अगर तुम अल्लाह तुम्हें ये तौफीक ना देता कि तुम्हें कह देता कि जाओ सुबह और शाम जिक्र करो मेरा बैठ के, ये अल्लाह का कितना बड़ा इनाम मैंने तुम्हें दिया है कि मैंने तुम्हें तौफीक दे दी है कि मेरे नाम को जाओ जिक्र करो ताकि मैं तुम्हें साफ कर दूं धो दूं तुम्हें, ये है जिक्र का मकसद। ये तो मरने के बाद आदमी आंख बंद हो जाएगी खुदा की कसम, तो जिंदगी में बुजुर्ग को दिखा दी गई चीज हम होंगे किसी सामने, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जिनको बारे में हदीसों में आया है कि जो सुबह और शाम जिक्र करने वाले लोग जो होंगे तो वो तुमके तो चेहरे चमक रहे होंगे, फरिश्ते भी हैरान होंगे क्या वजह है, वजह यह कि नाते धोते थे अंदर से अपने गए अल्लाह अल्लाह किया जो सुबह गुनाह था सब साफ हो गए, फिर शाम को गुनाह सुना चमक गया तो सुबह फिर अल्लाह ने वाशरूम खोले हुए थे लोग जाते थे शौक से बैठते थे हमने मस्जिद में जिक्र जारी किए हुए थे, जिनको सेंस था समझ थी जिन बातों को समझते थे कि हमने कुरान में कहा है अपने बुजुर्गों की मिसालें दी हैं हमको समझाया है उनके शऊर जाग गए थे तो वो तो इन चीज़ों को जाया नहीं करते थे, और कोई किसी पर एहसान थोड़ी करता है कि जिक्र करने आता है जो नहीं आता कोई किसी पर एहसान नहीं करता, किस पे एहसान है, बल्कि आने वालों को तो अल्लाह का इंतहा बेनतहा शुक्र करना चाहिए। जैसे एक आदमी है और वो जाके किसी जगह ठहरता है तो वो कहते हैं यहाँ तो पानी का इंतजाम नहीं है साहब, कितना मुश्किल हो जाएगी उसके लिए, कहाँ कैसे वजू करें यार कैसे नए इंतजाम नहीं हो रहा, तो अगर कहीं से वो पानी का इंतजाम कर देता है तो हम कहें यार कितना बड़ा एहसान है आपका, हमें आपने पानी तो दे दिया, तो कितना बड़ा अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दे दिया कि चलो जाओ सुबह शाम जिक्र कर लो मैं तुम्हें साफ कर दूंगा, हम बिस्तरे पड़े रहे गंद नहीं है हमारे अंदर खुदा की किस्म का अंदर चीर के देखा जाए हमारे अंदर, वो तो एक दफा सोचा था जुनैद बगदादी ने किसी के बारे में, मैं अभी तो एक गुनाह की बात कर रहा हूँ जो इसको तो हम तस्वीर नहीं कर सकते, आम बात है जरा उसकी शुक्र तो देखो यार उनको देखो क्या करते, आम बात है बिल्कुल पता नहीं होता क्यों कि अंदर इतना गंद जड़ी बूटी जमा हो गई हैं कि हमें पता ही नहीं कि अच्छा फूल भी लगाया उसमें गुलाब भी है कोई चंपा भी है कोई चमेली भी है, क्योंकि जड़ी बूटी में क्या पता चलता है अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो अच्छा फूल भी नजर नहीं आता उसमें। तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि आप अल्लाह ने शऊर तो पैदा कर दिए, अगर इस नीयत से आप काम कर रहे हैं मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हम लोग, अल्लाह के करम और फजल का इनाम है इतना बड़ा कम से कम अल्लाह ने हमें इतनी तौफीक दे दी है ना समझते हुए कि हम अपने गुनाहों को धो रहे हैं, बोले सुभान अल्लाह। तो मजीद ये कहूँगा कि आप मैं आपको मुस्तैद करें इस चीज़ में कि अगर ऐसी मौत आ जाए कि हमारे अंदर कोई गुनाह है अल्हम्दुलिल्लाह सुबह आपने आगे जिक्र किया तो सारे गुनाह आपके जो अल्लाह ने धो दिए अल्लाह का बात है कुल इंसान सकालतन सकालतन कल जिक्र अल्लाह हुक्म है अल्लाह का जिस जो आया सुबह, और इस तसव्वुर में कोई इंसान रहा ये मैं आपको बताता हूँ आज के दौर में खसूसन कि यार मेरे अंदर तो कोई गुनाह ही नहीं है, या औरत कोई मर्द उससे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं, चाहे कितने ही बड़े मैं कहता हूँ जुनैद बगदादी से कोई बड़ा इंसान नहीं हो सकता, چاہے کسی لانے کتنے ہی بڑا انسان ہے اور وہ یہ سوچ کے ذکر نہیں کر رہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے ذکر کرنے کی. آئے مین اے فائیو ڈاؤن مائنڈ, میں تو کہتا ہوں اس سے بڑا بیوقوف انسان نہیں, بلکہ میں تو یہ لفظ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے تو نظر اٹھا لی ہے, وہ تو کچھ سوچ بھی نہیں رہا کہ میرے لیے یہ مجھے ضرورت ہے بھی غسل کی یا نہیں ہے, اور وہ بائی پاس کر رہا ہے ذکر کو, یہ سوچتے ہو کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, آئی ایم آلرائٹ, میرے اندر کوئی گناہ نہیں ہے. وہ اس چیز کو ریجیکٹ کر رہا ہے قرآن کی بات کو کہ تم گناہوں میں بھرے ہو, پھر قلوب ہمارا جو کہتا رہتا کہ تمہارے قلوب کے اندر کیا ہے, بیمار ہو, مریض ہو تم, فساد نہ ہونا, اس کو ہم بڑھاتے رہیں گے اور تم اس کو سرائی نہیں کی. یہ بیل کی طرح پھیلتی ہے, جیسے ایک بیل ہے نا, گندی بیل ہوتی ہے نا, کسی پودے پہ لگا دو وہ بیل پھیلتی رہتی ہے, تو گناہ پھیلتے رہتے ہیں اللہ کے واسطے, خدا کے واسطے. اللہ کے اس پیغام کو سمجھو میرے بھائی, روز جنازے اٹھتے ہیں, دیکھو بالکل اس دھوکے میں نہ ہو کہ ہم بالکل اندر سے پاک صاف ہیں, سواہاں ہی پیدا ہوتے ہیں ہمارے اندر گناہ نہ ہو. بس فضل یہ کرے آدمی کہ آج سے تیسے الحمد للہ جس طرح بھی ہو آدمی صبح اور شام کی ڈیوٹی رکھ لے, اپنی یہ تو مجھے کرنی ہے, یہ تو میں نے کرنی, اس کے علاوہ میرا تو وجود ہی ختم ہو جائے گا, کوئی چیز نظر نہ آئے آپ کو, یہ ظاہری جتنے ہیں. یہ ایک چیز بالکل صاف میں بتاتا ہوں, کسی آدمی کو دیکھنا ہو کہ کون اچھا ہے, جیسے ہم سب تزکیہ کر رہے ہیں, تصفیہ کر رہے ہیں, تو کیا معیار ہے ہمارا کہ یہ آدمی صحیح ہو رہا ہے, یہ تہجد پڑھنے لگا ہے ماشاء اللہ, اس نے امامہ مان لیا ہے جی, یہ داڑھی لگائی ہے جی, یہ تو ماشاء اللہ جماعت میں آنے لگا ہے, تو فرسٹ کلاس جانے لگا ہے, فلاں کر رہا ہے, یہ نہیں ہے, نہیں ہے. ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے, سنیں, نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان درے, آپ نے سوال کیا, چھوٹا سوال کیا, ان درے, نیکی کے بارے میں سوال کیا کہ نیکی کیا ہے, صحابی ہے اس کو بھی نیکی کی نہیں پتا, سبحان اللہ, یعنی کتنے آپ نے ڈیپ تھے یہ لوگ, اس کو نیکی کی نہیں پتا, انل بری, یا رسول صاحب کو پوچھتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث میں آپ بتا رہا ہوں, صحابی پوچھ رہے ہیں, نواز صدی اللہ تعالیٰ کہ جی انل بری یا رسول صاحب کہ نیکی کیا ہوتی ہے, کون کس چیز کو میں نیکی سمجھوں میں کروں, کہتا تجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا, نماز نہیں پڑھتا تھا, تہجد نہیں کرتا, تو فلاں نہیں کرتا, وہ سب کرتا تھا, لیکن وہ کہہ رہا ہے نیکی, اللہ اکبر, یعنی اطمینان نہیں ان کو کہ شاید نیکو کی ہے ایک چیز نیکی جو بیچ میں ہمیں ابھی تک پتہ نہیں چلی, کس کو ہم نیکی سمجھیں, تہجد کو سمجھیں, نماز کو سمجھیں, عمرے کو سمجھیں, حج کو سمجھیں, کس چیز کو ہم نیکی سمجھیں, اور اتنے سے جواب دیا میرے اللہ آقا نے, سبحان اللہ, پورا دین بتا دیا دوستو, آنکھ کھل جانی چاہیے ہماری. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البر حسن خلق, کوئی سی عبادت کا جواب نہیں دیا انہوں نے, کہ اگر نیکی جاننا چاہتا ہے تو نیکی صرف ایک ہی چیز کا نام ہے کہ تیرا اندر کا جو خلق ہے وہ بہترین ہونا چاہیے, تیرا اخلاق بہترین ہونا چاہیے, یہ نمازیں, یہ زکات بہت کام آئیں گی, بہت کام آئیں گی, ہے تو اصل یہی چیز, لیکن اس وقت جب اس تناسب سے ہم اس کو لے کے اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے, اس حساب سے لے کے پیش ہوں گے جس سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, اپنی مرضی سے ہم نہ لگائیں جی ہمارے پاس یہ نماز ہیں, یہ بالکل بہت بڑی چیز ہے, سب سے افضل چیز ہے عبادات, اس میں کون شک کر سکتا ہے, لیکن ضائع بھی تو کر رہے ہیں اس کو, کیا اسی طریقے سے ہم پیش کریں گے, اللہ کہا جی سب عبادت بہت عظیم ہے, لیکن یاد رکھو ان عبادتوں کو میرے سامنے جب پیش کرو تو ہاتھ سے پیش نہیں ہوں گے تمہارے مال, منہ سے پیش نہ کرنا, نگاہوں سے پیش نہ کرنا, ان ساری عبادات کو تم نے کس سے پیش کرنا ہے, قلب سلیم سے میرے سامنے پیش کرنا ہے, یا نہیں مولانا پوچھ, یہ ہے کہ میرے پاس آؤ تو کیا لے کر آؤ, ہوں گی یہی عبادات جو ہم کر رہے ہیں, الحمدللہ نماز روزہ حج بڑی چیز ہے, یہ رمضان آ رہا ہے بہت بڑی عبادت ہے, لیکن سنائیں کہ یہ سب کچھ لے کے آنا ہے میرے سامنے, جیسے ایک آدمی فائل پیش کرتا ہے نا کسی بڑے آفس کے سامنے, فائل اس طرح لے کے آنا, یہ سب لے کے آنا, قبول ان تمام چیزوں کو اس وقت کروں گا جب وہ جس برتن میں تو لے کے آئے وہ کون سا برتن ہو, قلب سلیم ہو, تو قلب سلیم کا منتا ہے کہ قلب سلیم وہیں بننا تھا دنیا میں, یہاں نہیں بنے گا, اس میں ڈال دل کو اتنا خوبصورت کر دے کہ ہر نماز تیری اس میں بند ہوتی چلی جائے, اللہ ایسا بینک بن جائے تیرا دل, اتنا خوبصورت تیرا بینک ہو جائے دل کہ جو چیز تو نیکی کرے اس میں جمع ہوتی چلی جائے. तो साहिबी ने कहा ये नेकी क्या है जी, नेकी हमें तो बताएं। उन्होंने कहा नेकी मैं बताता हूं तुझे, वो क्या है, उसमें खुल के तेरा कि तेरी लोग तारीफ तेरी जाहिर से ना करें, बड़ा इबादत गुजार, लोग तेरी तारीफ इस तरह करें कि सुभान अल्लाह, इसकी जबान देखो तो कितनी मीठी है, इसकी बातें सुनो तो कितना प्यारा है, जब भी मिलता है तो मुस्कुरा के मिलता है, किसी की बात सुनता है तो मोहब्बत से सुनता है, आज तक हमने सुने नहीं किसी को बुरा कह रहा हो, किसी की बुराई कर रहा हो, नखरे कर रहा हो, अपने अपने आप को अच्छा समझता हो, तवाज़ा हो, अखलाक हो, घर हो या बाहर हो, हर आदमी उसकी किसकी तारीफ करे, अखलाक की करे। हम चाहते हैं हमारी नमाजों की तारीफ हो, हमारे सजदों की तारीफ हो, हमारी चीजों की तारीफ हो, बस दुनिया देखे तारीफें हो रही हो जनाब, हर जगह तारीफ हो हमारी जाहिर से, सुभान अल्लाह। कौन करता है, हंसते हैं लोग, कहते हैं देखो जी बड़े नमाजें पढ़ता है, फला काम कर रहा था, फिर नमाज पढ़ता है कैसी जबान देखो जी, अभी गाली दे रहा था बाहर खड़ा हो गया, अभी देखो जी उसकी गीबत कर रहा था, अभी फला को उसने ऐसे कहा, अभी देखो जी बच्चे को थप्पड़ मारा, तभी देखें इसके दिल में क्या ख्याल आया था, ये कोई जिंदगी है, सारी मेहनत जाया कर रहे हैं नहीं कर, तो इसके लिए भाई वही करो जो बताया ये अल्लाह के नबी ने, इस चीज को हासिल करने के लिए कोई दारुल उलूम नहीं है, कोई किताबें नहीं है, कोई कोर्स नहीं है, इसके लिए एक ही बताया, कौन हुआ सादगीन, किसी अल्लाह वाले की सोबत अख्तियार करो और जिक्र अल्लाह शुरू कर दो, सीधा रास्ता है, ये वहां से मिलती हैं चीजें, ये चीजें वहां से मिलती हैं, और कोई दर नहीं है इसका, किसी अल्लाह वाले के पास सही नीयत से जाओ कि हम इंसान बने, हमारी बुराइयां खत्म हो और हमारे दिल की सफाई होती चली जाए, और अल्लाह के वास्ते, अपने वास्ते, और अल्लाह के फजल को समझते हो, कर्म को समझते हो, सुबह और शाम के जिक्र को मजबूती से पकड़ो, सुबह नींद आओगे तो शाम तक वो गंध फैल जाएगा, फिर बड़ा मुश्किल होगा शाम को निकलना, साथ के साथ साफ करते चले जाओ, और ये दावा कोई करता है कि मैं तो बहुत पाक साफ हूं, बस वो तो हो गया शैतान, मुझे तो जिक्र की जरूरत ही कोई नहीं जी, मेरे अंदर कोई गंध ही कोई नहीं जी, मुझे हमें नहीं कुछ फर्क, ठीक ठाक है जी, हम तो बड़े फर्स्ट क्लास है, हमें कहाँ गंध है जी, हमें क्या सफाई, नहीं ये हुक्म दे, सबसे गंदा अपने आप को समझे, सबको अपने से अफजल समझे, और ये समझना और है और हकीकतन दिल में आ जाना और बात है, हकीकतन दिल में आ जाना और बात है, जिसमें एक्टिंग नजर नहीं आती, हकीकतन मैं हैरान, जैसे मैंने आपको वाकई सुनाया, अब तो टाइम नहीं है, तब आपको दोबारा रिपीट कर देता है, वाकई बड़े बड़े आदमी को आप देखें वो तो हैरान थे, बड़े बड़े मजमे जो सबसे बड़ा आदमी कहते हैं यार ये तो मैं हूं, कहते मैं ये समझने में मतलब आप ये समझ, मैं तो आपसे पहले ही चीज समझ रहा हूं, मैं तो खुश शर्मिंदा बैठा हूं इस चीज में, वजह क्यों हो जाता है ऐसा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, जो अल्लाह ने तरीका बताया है उस तरीके को अख्तियार कर लें, आप ऐसे लोगों में बैठना शुरू हो जाएं, ऐसे इंसान से दोस्ती कर लें और अल्लाह का जिक्र शुरू कर दें, इंशाल्लाह उससे फात उतरना शुरू हो जाएंगे बीच में, कोई मेहनत इसमें नहीं है, इसमें सब मेहनत इतनी है कि सुबह शाम का जिक्र अख्तियार करो और किसी अल्लाह वाले को सदक दिल से इस नियत से दोस्त बनाओ उसके साथ, कोई कारोबारी नहीं है, कोई साहब नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, वाहिद अल्लाह से दुआ करो अल्लाह ताला ऐसे इंसान से मुझे मोहब्बत पैदा करो, अल्लाह ताला ऐसे इंसान से मुझे बैठना बिठा दे, अल्लाह उस मुझे करीब कर दे, खुद हदीस में अल्लाह के नबी ने बताया, अल्लाह उसको हब्बा कहो जो हब्बे कहो हब्ब, कितनी बढ़िया हदीस, अल्लाह अपनी मोहब्बत दे, अपने प्यार जो तुझसे मोहब्बत करते हैं उसकी मोहब्बत मुझे अता फरमा, ऐसे अमल मुझे अता फरमा, ये अल्लाह वालों की मोहब्बत तो मांग रहे, ये हदीस है या नहीं, ये याद रखना एक बात दोस्तों कि अगर कदम नहीं उठाओगे तो ये कोई गुसलखाना नहीं मिलेगा आपको जो हमें साफ कर दे, इसके लिए तो हमें जाने ही पड़ेगा अल्लाह के जिक्र के लिए अल्लाह वालों के पास, और वाहिद इसलिए कि कल मौत आनी है, और अगर ये गन हमारे साथ चले गए, अगर क्या जाएंगे ये कब्र में जाएंगे, ये यही निकलेंगे अंदर से चीजें जो है अल्हम्दुलिल्लाह, और जिक्र करके जाएंगे एक गन नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह, नूर ही नूर जाएगा, कहां से साफ करके हमने यहीं से निकाल दिया, कुछ तोबा से निकल गया, कुछ अल्लाह के जिक्र से निकल गया, खुद रोना आ जाएगा, खुद खौफ आ जाएगी, खुद गिरी आ जाएगा इंसान के, दुआ करें अल्लाह पाक हम सबको तौफीक से।